एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे सुनकर कुछ लोग शायद चौंक जाएं, मार्क्सवाद।
हाँ, अक्सर लगता है कि ये तो बीती बात हो गई,
खासकर सोवियत संघ के पतन के बाद तो।
हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने तो कह दिया था इतिहास का अंत हो गया। लेकिन आज हम जिस किताब पर चर्चा कर रहे हैं, क्रिटिकल कंपेनियन टू कंटेम्प्रेरी मार्क्सिज्म, वो एक अलग ही कहानी कहती है।
अच्छा।
इसके संपादक हैं जैक्स बिडिट और स्टेथिस कविला केस।
और ये किताब ये तर्क देती है कि आज की दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती आर्थिक असमानता है, पर्यावरण का जो हाल है, या फाइनेंस की दुनिया में जो उथल पुथल मची रहती है, उन सबको समझने के लिए मार्क्स के विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो सकते हैं।
अच्छा, तो आज के इस ज्ञान गोष्ठी का मतलब मिशन क्या है?
हाँ, मिशन ये है कि हम इस भारी भरकम किताब से कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। क्योंकि देखिए, ये किताब मार्क्सवाद का कोई पत्थर की लकीर वाला वर्जन नहीं देती।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि दिखाती है कि आज के दौर में मार्क्सवादी सोच कितनी विविध है, कितनी जिंदा है।
सही।
और ये सवाल उठाती है, आज के जमाने में मार्क्सवाद की क्या भूमिका, मतलब क्या रोल हो सकता है, और इसका लक्ष्य गोल क्या होना चाहिए।
हाँ, रोल और गोल, ये अहम सवाल है। तो चलिए इसे खोलते हैं।
बिल्कुल, इस जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इस किताब में हमारे लिए क्या खास है।
ठीक है,
शुरुआत करते हैं संपादकों से, क्योंकि उनका नजरिया इस किताब को खास बनाता है ना।
हाँ बिल्कुल। पहले हैं जैक्स बिडिट, 1935 में जन्मे, 2023 में गुजरे, फ्रांस के एक जाने माने दार्शनिक थे। वो मार्क्स की मशहूर किताब कैपिटल को एक नए मतलब गहरे नजरिए से पढ़ने के लिए जाने जाते थे।
अच्छा, क्या नजरिया था उनका?
वो मानते थे कि आधुनिक समाज जो है वो दो ताकतों के बीच एक तरह से खिंचा रहता है, एक तरफ बाजार और वर्ग संबंध,
ठीक है,
और दूसरी तरफ राज्य और संगठन की ताकत, मतलब ब्यूरोक्रेटिक पावर। वो इस किताब में एक दार्शनिक गहराई लाते हैं, एक संरचनात्मक विश्लेषण।
दिलचस्प। और दूसरे संपादक स्टेथिस कोविलाकिस?
हाँ, स्टेथिस कोविलाकिस वो एक ग्रीक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं, किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाते हैं, और वे समकालीन रेडिकल वामपंथ की एक अहम आवाज माने जाते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो सिद्धांत को जमीनी हकीकत से, राजनीतिक रणनीति से, इतिहास से जोड़ते हैं।
मतलब सिर्फ अकेडमिक बातें नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूछते हैं कि इन विचारों का आज की राजनीति में क्या मतलब है, क्या किया जा सकता है।
तो इन दोनों का साथ आना ये अपने आप में खास है।
हाँ, यही इस किताब की खूबी है। एक तरफ विरिट की वो दार्शनिक कठोरता, गहरी संरचना, डाव, ये मिलकर मार्क्सवादी सोच को सिर्फ एक अकेडमिक चर्चा से कहीं ज्यादा बनाते हैं।
हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सवाल उठाते हैं कि मार्क्स के विचारों का आज क्या रोल और गोल हो सकता है।
बिल्कुल।
तो ये किताब असल में क्या करने की कोशिश कर रही है, इसका मकसद क्या है?
मूल रूप से देखा जाए तो ये 21वीं सदी की शुरुआत में मार्क्सवादी सोच का एक बड़ा सर्वे है, एक तरह का जायजा।
ठीक है।
लेकिन ये कोई पुरानी धूल झाड़ने जैसा काम नहीं है। किताब का मुख्य तर्क ये है कि 90 के दशक में जो मार्क्स को अप्रासंगिक मान लिया गया था,
हाँ, कह दिया था कि अब इनकी जरूरत नहीं है,
वो एक बहुत बड़ी भूल थी। आज दुनिया जिन संकटों से गुजर रही है, चाहे वो 2008 का वित्तीय संकट हो या क्लाइमेट चेंज, उन्हें समझने के लिए मार्क्स की जरूरत है।
हाँ, लेकिन एक मिनट, जरूरत किस तरह से? क्या ये किताब कहती है कि मार्क्स के पास सारे जवाब हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य बताने वाले गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की तरह जो बीमारी की जड़ पकड़ सके।
अच्छा, डायग्नोसिस के लिए।
हाँ, डायग्नोसिस के लिए। किताब कहती है कि मार्क्स ने हमें पूंजीवाद के अंदरूनी कामकाज को समझने के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली औजार दिए हैं,
टूल्स।
हाँ, टूल्स। और ये किताब उन औजारों को फिर से तेज करने और आज के हिसाब से ढालने की कोशिश है।
तो ये दिखाती है कि मार्क्सवाद कोई एक ही तरह की चीज नहीं है जैसा सोवियत संघ के टाइम में लगता था।
बिल्कुल सही पकड़ा। ये किताब यही दिखाती है कि मार्क्सवाद कोई मोनोलिथिक मतलब एक रूप विचारधारा नहीं है, बल्कि ये विचारों का एक बहता हुआ दरिया है जिसमें कई धाराएं हैं, बहुत सारी बहसें हैं, और हाँ, आत्मालोचना भी है। ये किताब उस पूरे नजारे का एक नक्शा पेश करती है।
तो ये नक्शा हमें कहाँ ले जाता है, अब किस तरह की यात्रा है ये?
देखिए, ये शुरुआत करती है मार्क्स के मूल विचारों से, खासकर उनकी किताब कैपिटल से।
कैपिटल, हाँ।
लेकिन ये उसे कोई बंद किताब, कोई धर्म ग्रंथ नहीं मानती, बल्कि एक खुली हुई प्रयोगशाला की तरह देखती है।
खुली प्रयोगशाला मतलब?
मतलब कि उसमें आज भी प्रयोग हो सकते हैं, नई चीजें खोजी जा सकती हैं। इसमें नए शोध दिखाए गए हैं जो मार्क्स के मूल्य, शोषण और संकट के विश्लेषण में आज भी गहरे अर्थ खोजते हैं।
अच्छा,
और यहाँ जोर मार्क्स के दिए जवाबों पर उतना नहीं है जितना उनके सवाल पूछने और विश्लेषण करने के तरीके पर है, उनकी पद्धति पर।
अच्छा, तो ये सिर्फ आर्थिक विश्लेषण तक सीमित नहीं है फिर?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब फिर दिखाती है कि कैसे मार्क्सवादी विचारों का इस्तेमाल इतिहास को समझने के लिए, राज्य और राजनीति को समझने के लिए किया गया है। ये उन पुरानी थोड़ी सरल धारणाओं से आगे बढ़ती है, जैसे ये मानना कि इतिहास कुछ तयशुदा पड़ावों से गुजरता है।
हाँ, वो स्टेज थ्योरी।
या फिर राज्य सिर्फ अमीरों की कठपुतली है। यहाँ विचारक जैसे इथियान बालेबार हैं जो राज्य, नागरिकता और हिंसा के जटिल रिश्तों को खंगालते हैं।
और ग्राम्शी, पोलंजास का भी जिक्र आता है।
हाँ, जरूर। ग्राम्शी की हेजेमनी यानी वर्चस्व की अवधारणा कि कैसे सहमति से भी शासन चलता है, या पोलंजास का वो विचार कि राज्य खुद वर्ग संघर्ष का एक मैदान है, ये सब यहाँ अहम हो जाते हैं।
ठीक है, लेकिन आज की दुनिया से इसका क्या जुड़ाव बनता है, ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंस वगैरह?
हाँ, यहीं पर ये किताब और दिलचस्प हो जाती है। इसमें डेविड हार्वी जैसे बड़े नाम हैं जो आज के ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंस के बढ़ते दबदबे, जिसे वित्तीयकरण या फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं,
फाइनेंशियलाइजेशन,
हाँ, और साम्राज्यवाद के जो नए रूप हैं उनका विश्लेषण करते हैं।
तो ये समझने में मदद करती है कि दुनिया में असमानता क्यों बढ़ रही है, या 2008 जैसा संकट क्यों आया।
हाँ, बिल्कुल। यहाँ मार्क्स की जो मूल अवधारणाएं हैं, जैसे संचय, एक्यूमुलेशन, संकट का सिद्धांत, क्राइसिस थ्योरी, असमान विकास, अनइवन डेवलपमेंट, ये सब औजार की तरह इस्तेमाल होते हैं आज की स्थिति को समझने के लिए।
ये तो हुई अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात, लेकिन संस्कृति, विचारधारा का क्या? क्या मार्क्सवाद सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित है?
नहीं नहीं, किताब इस पहलू पर भी काफी जोर देती है। वो बताती है कि कैसे पूंजीवाद सिर्फ आर्थिक दबाव या राज्य की शक्ति से ही नहीं चलता,
बल्कि
वो हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी रोजमर्रा की आदतों के जरिए भी अपना दबदबा बनाता है। इसे ही विचारधारा कहते हैं।
अच्छा,
इसमें फिर ग्राम्शी की हेजेमोनी की बात आती है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों अडोर्नो, हुर्कहाइमर की बात आती है, या फ्रेडरिक जेम्सन की।
जेम्सन, हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म वाले।
हाँ, वही, जिन्होंने बताया कि कैसे उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म, असल में देर से पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है।
मतलब हमारी फिल्में, संगीत, मीडिया, ये सब कैसे उस व्यवस्था को बनाए रखने में या उसे सामान्य दिखाने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, ये सब कैसे हमारी चेतना को आकार देते हैं, कैसे असंतोष को भी सोख लेते हैं।
ये तो काफी काफी व्यापक फलक है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या मार्क्सवाद अपनी आलोचना भी करता है? क्या ये अपनी कमियों को देखता है, जैसे नारीवाद या पर्यावरण के मुद्दों पर इसका क्या रुख रहा है?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब इससे बचती नहीं है, बल्कि एक पूरा हिस्सा ही नारीवाद की चुनौती पर है।
अच्छा,
ये मानती है कि हाँ, मार्क्सवादी परंपरा में ऐतिहासिक रूप से अंधेरे कोने रहे हैं, पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह रहे हैं, तो ये उन समाजवादी नारीवादी या मार्क्सवादी नारीवादी विचारों को सामने लाती है जो वर्ग के सवाल को लिंग आधारित शोषण से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
जैसे
किन मुद्दों पर बात होती है? जैसे घरेलू काम का मुद्दा, कि इसका आर्थिक मूल्य क्या है, सामाजिक प्रजनन का सिद्धांत यानी समाज को चलाने के लिए जो देखभाल का जरूरी काम होता है, बच्चों को पालना, बुजुर्गों की देखभाल, वो सब।
हाँ, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है।
बिल्कुल। और कैसे वर्ग, नस्ल और लिंग का शोषण आपस में गुथा हुआ है, ये सब बहसें इसमें शामिल हैं।
ये जरूरी है। और पर्यावरण, आज के समय का शायद सबसे बड़ा संकट, उस पर क्या कहती है किताब?
हाँ, किताब के आखिरी हिस्से इसी पर फोकस करते हैं और तर्क ये है कि पूंजीवाद का जो मूल स्वभाव है, लगातार मुनाफा कमाना, लगातार विस्तार करना,
इन्फिनिट ग्रोथ वाला आइडिया,
हाँ, वो अनंत विकास की सोच, वो मूल रूप से पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। ग्रहों के अस्तित्व के साथ वो मेल नहीं खाती। तो ये उस पर सवाल उठाता है। साथ ही ये आज के राजनीतिक माहौल को, नए सामाजिक आंदोलनों को और पूंजीवाद विरोधी वामपंथ के सामने क्या चुनौतियां और संभावनाएं हैं, इसका विश्लेषण करता है।
तो कुल मिलाकर ये किताब मार्क्सवादी बाजारों का इस्तेमाल करके हमारे आज को, हमारे वर्तमान को समझने की एक बड़ी कोशिश है।
हाँ, बिल्कुल। द प्रेजेंट एज हिस्ट्री, वर्तमान को इतिहास की तरह देखना।
अच्छा, तो इस पूरी चर्चा से, इतनी सारी बातों से, कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? अगर हमें 3-4 सबसे अहम संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात ये निकलती है कि मार्क्सवाद मरा नहीं है। ये खबरें बहुत बड़ा चढ़ाकर कहीं गई थीं। ये जिंदा है और बदल रहा है। ये कोई बंद पोथी नहीं, बल्कि विचारों का एक खुला मैदान है जिसमें लगातार बहस और विकास चल रहा है। और सबसे जरूरी, ये अपनी ही कमियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने को तैयार है।
हाँ, ये आत्म आलोचना वाला पहलू जरूरी है। दूसरी बात शायद ये कि पूंजीवाद की जो आर्थिक आलोचना है वो आज भी केंद्रीय है।
हाँ बिल्कुल, भले ही मार्क्सवाद संस्कृति, राजनीति, दर्शन तक फैल गया हो, लेकिन उसका दिल, उसका कोर आज भी पूंजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण में धड़कता है। वो जो मूल अवधारणाएं हैं, मूल्य, शोषण, मुनाफा, संकट, ये शब्द आज भी हमारी दुनिया को समझने के लिए जरूरी हैं, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो या हमारे आसपास का बाजार।
सही है।
और तीसरा संदेश?
तीसरा है सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ने की जरूरत,
प्रैक्टिस।
ये किताब सिर्फ दुनिया की व्याख्या करने के लिए नहीं है,
नहीं,
बल्कि
ये उसे बदलने में रुचि रखती है। ये अकादमिक विचारों को जमीनी आंदोलनों और राजनीतिक रणनीति से जोड़ने पर जोर देती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या गलत है, बल्कि ये भी कि इसे ठीक कैसे किया जाए, एक ठोस रणनीति क्या हो।
चौथा, शायद वो दूसरे आंदोलनों से सीखने वाली बात।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किताब साफ कहती है कि मार्क्सवाद को अकेले चलने से काम नहीं चलेगा, उसे नारीवाद, नस्लवाद विरोधी आंदोलनों, पर्यावरण आंदोलनों के साथ संवाद करना होगा, उनसे सीखना होगा।
भारत जैसे देश में तो ये और भी जरूरी है, जहां वर्ग के साथ जाति, लिंग, धर्म का सवाल इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, इसी को शायद इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। ये समझना कि उत्पीड़न के कई रूप हैं और वे आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
और आखिरी बात, पांचवी,
शायद ये कि मार्क्सवादी विश्लेषण एक औजार है, एक टूल किट, कोई पत्थर की लकीर नहीं।
अच्छा।
ये हमें इतिहास और समाज की जटिलताओं को समझने का एक ढांचा देता है, एक लेंस देता है, लेकिन ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बता दे। इस किताब में सीधे सीधे यादगार पंक्तियां ढूंढना तो मुश्किल है, क्योंकि ये कई लेखकों का संग्रह है, लेकिन कुछ केंद्रीय विचार हैं जो बार बार उभर कर सामने आते हैं। जैसे एक विचार आपने पहले बताया था।
हाँ, व्याख्यात कथन एक, वो ये कि 21वीं सदी के संकट, चाहे वो 2008 का आर्थिक भूचाल हो या पर्यावरण का विनाश, ये पूंजीवादी व्यवस्था की कोई अचानक आई खराबी नहीं है। नहीं,
ये सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, ये तो सिस्टम के अपने अंदरूनी तर्क का ही नतीजा है, उसकी बनावट में ही है। इसलिए मार्क्स के विश्लेषण पर लौटना कोई पुरानी याद ताजा करना नहीं, बल्कि आज की एक तत्काल जरूरत है।
ये बात ये बहुत कुछ कहती है। ये मानती है कि जो मुख्य धारा के तरीके हैं सोचने के अर्थशास्त्र या राजनीति में, वो इन गहरी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में शायद नाकाम रहे हैं।
हाँ, और दूसरा अहम विचार है व्याख्यात कथन टू, मार्क्सवाद कोई बंद कमरा नहीं हो सकता, कोई आत्मसंदर्भित सिद्धांत नहीं। इसका जिंदा रहना, इसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो दूसरी रेडिकल आवाजों, खासकर नारीवाद, नस्लवाद विरोध, पर्यावरणवाद के साथ कितना गंभीर संवाद करता है और उनकी अंतर्दृष्टि को अपने में शामिल करता है, एक व्यापक मुक्ति का सिद्धांत बनाने के लिए।
ये दिखाता है कि किताब कट्टरता के खिलाफ है, ये खुलेपन पे जोर देती है, और ये मानती है कि शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं होता, उसके कई रूप हैं और सबको एक साथ समझना जरूरी है।
बिल्कुल। और तीसरा विचार, जो शायद सबसे ज्यादा अहम है आज के लिए,
मकसद ये नहीं है कि मार्क्स की किताबों में हमें आज की हर समस्या का रेडीमेड जवाब मिल जाएगा।
कोई खाका नहीं।
तो फिर मकसद क्या है?
मकसद है उनके सोचने के तरीके को, उनकी आलोचनात्मक पद्धति को फिर से जिंदा करना, उसे फिर से सक्रिय करना।
अच्छा, मेथड पे जोर है।
हाँ, एक ऐसा तरीका जो सतह के नीचे छिपे रिश्तों, ताकत के ढांचों और ऐतिहासिक ताकतों को उजागर कर सके, जो स्पष्ट दिखने वाली हकीकत पर लगातार सवाल उठाए।
यानी जवाब रटना नहीं, सवाल पूछना सीखना, ये सोचना कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं, क्या वे वाकई सामान्य हैं, किसके फायदे के लिए हैं, क्यों हैं?
बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन भारी भरकम विचारों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम, क्या फायदा है इन्हें जानने का?
हाँ, ये वाकई दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर लगता है ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हमसे क्या लेना देना। लेकिन पहली बात तो ये कि ये हमें अपने ही अनुभवों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है, जैसे अलगाव का विचार।
हाँ, एलिनेशन।
आज के कॉरपोरेट जॉब में कई लोग जो एक खालीपन या बेगानगी महसूस करते हैं कि उनके काम का कोई मतलब नहीं है या उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है।
हाँ बिल्कुल,
मार्क्स का ये सिद्धांत उसे समझने में एक फ्रेमवर्क देता है।
या फिर पण्य पूजा का विचार, हम अक्सर चीजों की चमक दमक में खो जाते हैं, उनके ब्रांड वैल्यू में।
महंगा फोन, डिजाइनर कपड़े, हाँ
हाँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन चीजों को बनाने में किन लोगों की मेहनत लगी, किन परिस्थितियों में वो काम करते हैं। ये विचार हमें उस छिपे हुए सामाजिक रिश्ते को देखने में मदद करता है, जैसे पर्दे के पीछे झांकना।
हाँ, जैसे रोजमर्रा की चीजों के पीछे का मैट्रिक्स देखना, ये अच्छा उदाहरण है। दूसरा, ये राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो लोग सक्रिय हैं, उनके लिए एक मजबूत वैचारिक आधार दे सकता है।
कैसे?
अगर कोई मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना है, या पर्यावरण बचाने के लिए, या किसी और सामाजिक मुद्दे पर काम कर रहा है, तो ये किताब उन अलग अलग लड़ाइयों को एक बड़ी सिस्टमिक तस्वीर से जोड़ने में मदद कर सकती है।
अच्छा, कनेक्शन बनाने में।
हाँ, ये सिर्फ विरोध करने से आगे बढ़कर बदलाव लाने की ठोस रणनीति बनाने में सहायक हो सकती है। राज्य को कैसे समझें, कब सिस्टम के अंदर काम करें, कब बाहर से चुनौती दें।
यानी कार्यकर्ताओं को सिर्फ तात्कालिक मुद्दों से आगे व्यवस्था की जड़ तक सोचने में मदद करना, बड़ा और होशियार सोचना।
बिल्कुल। तीसरा, पढ़ाई लिखाई या पेशेवर काम में भी ये उपयोगी हो सकता है। समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, यहाँ तक कि शहरी नियोजन या मीडिया स्टडीज के छात्रों या पेशेवरों के लिए,
हाँ,
ये एक वैकल्पिक नजरिया पेश करता है, मुख्यधारा के विचारों को चुनौती देता है।
कोई उदाहरण?
जैसे एक पत्रकार जो मीडिया की खबरों का विश्लेषण कर रहा है, वो ग्राम्शी की हेजेमोनी की अवधारणा का इस्तेमाल करके ये देख सकता है कि कौन सी कहानी कैसे कही जा रही है और वो किसके हितों को साध रही है। या एक अर्बन प्लानर जो डेविड हावे को पढ़ता है, वो शहर को सिर्फ इमारतों और सड़कों के नक्शे की तरह नहीं देखेगा,
बल्कि
पूंजी और वर्ग संघर्ष के मैदान के रूप में देखेगा। तो ये उपयोगी है, भले ही कोई खुद को मार्क्सवादी ना मानता हो।
सही बात है। और चौथा और शायद सबसे गहरा असर, वो है एक आलोचनात्मक नजर विकसित करने में मदद करना।
आलोचनात्मक नजर मतलब?
मतलब ये हमें सिखाता है कि अखबार की सुर्खियों या नेताओं के भाषणों की सतह के नीचे झांके, सवाल पूछने के लिए उकसाता है।
जैसे?
जैसे कि बैंकों को बचाने के लिए पैसा हमेशा होता है, पर स्कूलों अस्पतालों के लिए क्यों नहीं? या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते किसके फायदे के लिए बनते हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों के या आम लोगों और पर्यावरण के? ये किताब हमें इन सवालों को पूछने और उनके जवाबों को ज्यादा गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझने के बौद्धिक औजार देती है।
तो ये एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है।
हाँ बिल्कुल, सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाने का प्रशिक्षण।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं, आखिरी निचोड़ क्या है?
देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्क्सवाद को मुर्दा समझ लेना बहुत बड़ी गलती थी।
हाँ, ये बात तो साफ हो गई।
ये किताब दिखाती है कि ये एक बेहद समृद्ध, विविध और लगातार विकसित होती बौद्धिक परंपरा है, जो अस्तित्व में मौजूद हर चीज की निर्मम आलोचना के लिए समर्पित है, जैसा मार्क्स ने खुद कहा था। ये हमें दुनिया को देखने का एक अलग चश्मा देती है, समस्याओं को अलग अलग देखने की बजाय उन्हें एक वैश्विक विरोधाभासी व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना, एक सिस्टेमिक नजरिया।
और इसकी स्थायी प्रासंगिकता शायद तीन बातों में है। पहला, कि इसके मूल औजार आज भी काम के हैं।
हाँ, शोषण, अलगाव, संकट, पूंजी, ये 150 साल बाद भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हैं हमारे आज को समझने के लिए। दूसरा, इस परंपरा का स्वास्थ्य और भविष्य इसके खुलेपन में है,
अपनी आलोचना करने और दूसरों से सीखने की इच्छा में।
बिल्कुल, नारीवाद, पारिस्थितिकी, नस्लवाद विरोध, इन सबसे सीखने की इच्छा। और तीसरा, सिद्धांत मायने रखता है, थ्योरी मैटर्स।
दुनिया को बदलने के लिए उसे समझना पहला कदम है।
हाँ, हमारे समाज की गहरी संरचनाओं को समझना उसे सार्थक और स्थायी तरीके से बदलने की दिशा में एक अनिवार्य पहला कदम है।
तो संक्षेप में, ये किताब एक नक्शा भी है और एक हथियार भी।
हाँ, कह सकते हैं ये मार्क्सवादी सोच के विशाल और जटिल इलाके का नक्शा है जो रास्ता दिखाता है, और साथ ही ये विचारों की लड़ाई में एक वैचारिक हथियार भी है। ये हमें आज की प्रमुख विचारधाराओं को चुनौती देने और एक ज्यादा न्यायपूर्ण, बराबरी वाली और तर्कसंगत दुनिया के लिए सोचने का सामान मुहैया कराता है।
तो इसका असली मूल्य शायद इसकी अकादमिक गहराई, राजनीतिक प्रतिबद्धता और बौद्धिक खुलेपन के मेल में है।
हाँ बिल्कुल, ये साफ करता है कि आज के दौर में मार्क्सवाद की क्या भूमिका हो सकती है और क्या लक्ष्य होना चाहिए। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक जरूरी संसाधन है जो मानता है कि एक बेहतर दुनिया न सिर्फ संभव है बल्कि जरूरी भी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।